हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है इस साप्ताहिक श्री कृष्णा भावनामृत कार्यक्रम में और मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुख और स्वस्थ होंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको सुखे और स्वस्थ रखें। पुनः मैं आप सबके सेवा में परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी द्वारा प्रस्तुत राम कथा पेश कर रहे हैं। लीजिए महाराज जी को सुनिए।
स्वर्ग लोक की देवियां भगवान के जन्मोत्सव में या भगवान का अभिषेक के समय किसी विशेष पर्व पर वे नाचती, ऐसा नहीं कि जहां तहां उनको कोई हायर करके ले जाए और नचा के, वो भगवान के ही उत्सव में गाती है नाचती। और गंधर्व तो बहुत सुंदर गाते हैं। इस संसार में कोई गायक थोड़ा अच्छा गाने लगता है तो लोग कहते हैं तो गंधर्व जैसा गा रहा है। मनुष्य गंधर्व जैसा गा ही नहीं सकता है, वो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ शरीर होता है, कंठ स्वर और गान कला, उसकी केवल कल्पना करते हैं कि गंधर्व जैसा गा रहा है। सुने हैं क्या कभी गंधर्व का गीत? भाई कोई सुना होगा तब ना मिलान करके देखेगा कि हाँ भाई ठीक है, ऐसा टैली कर रहा है। वैसा नहीं गा सकते, कोई यहाँ पृथ्वी पर संभव नहीं। न वैसा फूल होता है यहाँ, न वैसा कंठ स्वर गीत और न वैसा सुंदर शरीर, वो सब कुछ विलक्षण है स्वर्ग में। और भगवान के उत्सव के लिए वे सब रिजर्व रहते हैं। स्वर्ग में भी रोज रोज जुलूस उत्सव निकलता ही रहता है, भगवान उपेंद्र वहीं रहते हैं बामन देव। और देवताओं के यहाँ भी भगवान के जन्मोत्सव घर घर में मनाए जाते हैं। अभी रामनवमी मना रहे होंगे देवराज इंद्र और ब्रह्मा जी सब अपने अपने भवन अपने अपने स्थान में जहां, और नृत्य गीत सब चल रहा होगा। पर हम मनुष्यों को इसका पता भी नहीं, जैसे यहाँ के मच्छर और मक्खियों को यह पता नहीं होगा कि इस मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बाहर उनको क्या पता होगा कि यह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे ही मनुष्यों को कुछ ही पता नहीं कि स्वर्ग में भगवान राम का दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सर्वत बलि महाराज शीतल लोक में मना रहे होंगे, प्रहलाद महाराज मना रहे होंगे, नारद जी किसी उत्सव के अध्यक्ष बने होंगे। इस प्रकार जिस समय भगवान प्रकट हुए तो सब देवता आ गए, ऋषि मुनि आ गए और आया करके गंधर्व गाने लगे। बरसहिं सुमन सुअंजलि साजी, गह गह गगन दुंदुभि बाजी। देवता आए और अंजलि साजी, विमान से अंजलि में भर भर करके फूल बरसाने लगे। बरसहिं सुमन सुअंजलि साजी, सुअंजलि साजी का खूब अच्छा से ले ले करके और धारावाही फूलों की वर्षा अयोध्या पर करने लगे। अयोध्या के लोग फूल देख के, देवताओं को नहीं देख रहे थे, फूल से भर गए अयोध्या चारों तरफ। तो जब सारा संसार इतना स्वच्छ है, इतना सुंदर हो गया था, तो अयोध्या कितनी सुंदर लग रही होगी जो भगवान की अपनी जन्मभूमि है, जहां वे प्रकट हो रहे हैं, जहां बाल लीला करेंगे और जहां वे रह करके राज्य करेंगे। जो कल्पना से बाहर की बात, कितनी सुंदर लग रही होगी अगर जाए कि गली और घर और वहां के वासी सब सजे धजे होंगे, तो पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, स्तुति कर रही नाग मुनि देवा। और नाग देवता और मुनि ये लोग वेद मंत्रों से या तत्काल ही बनाई गई स्तुतियों से भगवान का गुण गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। बहुविधि लाभ निजी सेवा, और सब अपनी अपनी सेवाएं भगवान को समर्पित कर रहे थे, दे रहे थे अपने ढंग की जो भी सेवा वो कर सकते थे, कोई धन से, कोई गीत से, कोई नृत्य से, कई प्रकार से भगवान को संतुष्ट करना चाहते थे। तो इस प्रकार देवता लोग विनती करके, भगवान से प्रार्थना करके, गर्भ स्तुति करके और अपने अपने घर चले गए भगवान की इच्छा को समझ कर। ठीक दशम स्कंध में जैसे वर्णन है, भगवान के जन्म के पहले देवता लोग आए और स्तुति करके चले गए भगवान, इसके बाद भगवान प्रकट हुए। तो यहां भी वही क्रम है, विनती करके देवता लोग अपने अपने धाम गए, तब जगत निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम, इसके बाद भगवान प्रकट हुए। जगत निवास प्रभु प्रकट है, यदि भगवान जगत के कण कण में है लेकिन वे अयोध्या में माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। कुछ काल के लिए माँ कौशल्या एक दिव्य बेहोशी में हुई, ये साधारण संसारिक बेहोशी नहीं जाननी चाहिए उसको, तो भगवान उसके गर्भ से प्रकट हुए। बहुत ही प्रसिद्ध है गीत है, इसे प्रायः आज के दिन सभी मंदिरों में गाया जाता है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याहितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन यविनामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला निज आयत शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले, संसार के दुख दग्ध जीवों पर दया करने वाले भगवान माँ कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला दीन दया, भगवान सहज कृपामय, अपना वैकुंठ छोड़ करके यहाँ आने की उनकी क्या आवश्यकता है, लेकिन जीवों पर दया करके प्रकट हुए, दुखियों पर भगवान दया करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और माता कौशल्या का हित करना चाहते। कौशल्या जी का क्या हित था, कौशल्या जी भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए बहुत दुखी रहती थी पहले, तो कौशल्या का स्तन पीने के लिए, कौशल्या के गोद में किलकारियां करने के लिए, कौशल्या के लाड प्यार को स्वीकार करने के लिए, उसको सुख देने के लिए भगवान प्रकट कौशल्या हितकारी, कौशल्या के यही हित है भगवान उसके गोद में आ। हर सित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। माँ कौशल्या ने देखा तमद्भुतम बालक मुझे क्षण, ठीक दशम स्कंद में भगवान कृष्ण के आविर्भाव के अनुसार वर्णन किया गया, अद्भुतम बालकम अद्भुत बालक। पहला अद्भुतम तो यह था कि यह बच्चा चार भुजा से जुड़ता, यह अलौकिकता है। संसार में जन्म लेते हैं बच्चे तो दो भुजा के, चार भुजा तो यहाँ किसी को होती नहीं, अगर हो जाए कभी तो ऑपरेशन करके उसको हटाना ही पड़ेगा। एक भुजा हो सकती है, एक टांग भले हो जाएगी लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं। कोई जन्म लेता है तो जन्म के समय ही बच्चे को पोलिया हो जाता है, क्या हो जाता है। भगवान परम सुंदर अद्भुत बालक देख रही है, हर्षित महतारी मुनिमन हारी, अद्भुत रूप निहारी या विचार, वो अद्भुत रूप है जो मुनियों के मन को भी हर लेने वाला है। जिन मुनियों का मन संसार के किसी भी बच्चे में, किसी स्त्री में, किसी में नहीं जा सकता है, स्वर्गीय अप्सराओं में भी जिनका मन नहीं जा सकता है, गंधर्वों के रूप में भी नहीं जा सकता, ऐसे मुनियों के भी मन को आकर्षित करने वाला उस बच्चे का रूप था। इसका अर्थ सब कुछ दिव्य, तब तो मुनियों का मन उस बच्चे में जा सकता था। मुनिमन हार, सब कुछ अद्भुत था। अद्भुत यह था कि जन्म लिया वो बच्चा प्रकट हुआ तो उसके पूरे काले काले केस उसके सिर पर उगे हुए। संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो एक भी बाल कपार पर नहीं रहता है, धीरे धीरे केस बढ़ते हैं, तब आदमी जुल्फी संवारना चालू करता है, वो बात पहले नहीं, और मरने से पहले भी केस सब समाप्त हो जाते हैं। ये दशा है मनुष्यों की, फिर भी अपने को कैसे कुछ लोग भगवान कह देते हैं, आश्चर्य। भगवान प्रकट हुए तो केस सब थे, उनके अंगुलियों में अंगूठी थी, पैरों में नूपुर था, आगे इसका वर्णन कर रहे निजे आयुध भुजचार लोचन अभिरामा तनु घन श्याम। शरीर कैसा था भगवान का, घन श्याम, बादल के समान श्याम, और गर्भ का कोई भी जल या रक्त भगवान के शरीर पर कुछ भी नहीं। इस संसार में तो जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो पता ही नहीं रहता है कहाँ जन्म लिया है, बंबई में लिया कि अहमदाबाद में लिया, कहाँ क्या पता है। बाद में सिखाया जाता है कि बताओ यहाँ घर है, यहाँ पोस्ट है, ये जिला है, ये सब सिखाया जाता है। हमने देखा जब मेला लगता है तो हम बच्चे के पाकिट में एड्रेस लिख करके डाल देते हैं, और कहीं खो जाए तो लोग उसको देख करके पहुंचाएंगे, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल पशु जैसा होता है, उसको पता नहीं होता है कुछ, बल्कि पशु भी चलाक होते हैं, कुत्ता को कहीं छोड़ दीजिए घूम कर आ जाएगा घर, है ना। लेकिन मनुष्य का बच्चा यदि खोया तो खो ही जाएगा, कोई बुद्धि नहीं होती। आगे चल करके स्कूल में नाम लिखाया जाता है, कॉलेज में पढ़ता है, तब कहने लगता है हम भगवान हो गए। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो भगवान नहीं थे ना, और मरने से पहले ही भगवत तो समाप्त हो जाएगी। भगवान इसको कहते हैं जिनके स्मृति में कोई खंडन नहीं है, जिनका श्री विग्रह अनादिकाल से एक रस है, भगवान के केस है, सब कुछ है, निज आयुध भुज चारी, और भगवान की चार भुजाओं में अपने आयुध, शंख चक्र गदा या धनुष बाण जो कुछ भी कहा, गर्भ से प्रकट हुए और शंख चक्र गदा लिए हुए प्रकट हुए। चमचम शीशा की तरह भगवान का शरीर चमक रहा था सांवला, कानों में कुंडल झूल रहा था, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, भूषण वनमाला। भगवान जब प्रकट हुए तो सारे गहने लगाए थे, सारे आभूषण लगाए थे, और यहाँ तक वनमाला फ्रेश पुष्पों की माला थी, कहीं कोई माला पिछला हुआ नहीं, मुरझाई हुई मुरझाए हुए भी पुष्प नहीं, वो कहां से आ गए। हम लोग जन्म लिए होंगे तो बिल्कुल नंग धड़ंग जैसे हमने बच्चे जन्म लेते, बाद में नाप नाप करके पैंट शैंट सिलाया जाता है, चाहे जो भी किया जाए, शुरू में तो अभी पैंट नहीं पहनाया जाता है, बहुत गंदा कपड़ा रख दिया जाता है उसी पर पेशाब शौच करने। मैं भगवान के जन्मोत्सव के समय पर ये बात कह रहा हूँ थोड़ा और क्लियर करने के लिए कि हमारी क्या स्थिति है, तो यहाँ अपनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, परंतु मनुष्यों का ऐसा स्वभाव है कि बिना प्राकृत जगत का वर्णन किए हुए अप्राकृत को समझ नहीं पाते, भगवान की विलक्षणता भगवान के स्वभाव समझना चाहिए। तो ये है अवतार, इसको अवतार कहते हैं, भगवान आते हैं अपने आयुध के साथ, निज आयुध, निज आयुध का तो अपना आयुध, भगवान का प्रसिद्ध आयुध है शंख चक्र गदा पद, गदा पद्म तो आयुध नहीं है, वह तो एक श्रृंगार आभूषण।
लेकिन
शंख चक्र और गदा ये हथियार आयुध भगवान इसको लेकर प्रकट है। भूषण वनमाला नयन विशाला, आभूषण और वनमाला लगाए हुए। क्या कोई बच्चा ऐसा संसार में जन्म लेता है? अब तो प्राय सभी बच्चे अस्पताल में जन्म ले रहे हैं, है ना? और धीरे धीरे घर पर तो जन्म लेना छूट नहीं जा रहा है, अस्पताल में जन्म ले, और अस्पताल से जन्म लेते ही सुई इंजेक्शन दिया जाता है, इस दंड दिया जाता है, बस उस कोमल शरीर में सुई चुभाई जाती है, दवा चढ़ाया जाता है, नहीं तो कोई रोग हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत बड़ी सजा है संसार में मनुष्य, ये इतना अज्ञानी जीव है तुरंत भूल जाता है। गर्भ में सजा भोग करके आया तब तक सुई खोसाने लगा, जहरीली दवा पिला दी, और बच्चा प्रतिकार नहीं कर सकता, मच्छर काटते हैं, खटमल काटते हैं, कह भी नहीं सकता है कि हमको यह दर्द हो रहा है, केवल रो रो करके अपने दुख को प्रकाशित करता है। कुछ भी हुआ बस रोना, एक ही आवाज एक ही सीटी बस है। भूख लगी है तो रोए, कोई काट दिया दुख हो रहा है तो रोना है, रोना। बाद में भाषा का ज्ञान होता है, बाद में कहते हमारे पीठ में कोई काट दिया, हमको भूख लगी है, बाद में अपनी संवेदना को हम प्रकाशित करते हैं भाषा के माध्यम से, लेकिन शुरू में तो कुछ भी ज्ञान नहीं। भगवान सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व सौंदर्य संपन्न, समस्त आयुध से संपन्न रहते। कोई व्यक्ति यह कह देता है कि अरे राम क्या है, दशरथ के लड़के, ठीक है वो दशरथ जी के पुत्र बने गए, लेकिन कैसे पुत्र हैं जरा ये भी तो विचार करो, वही तो विचार करो। मूर्ख लोग ये नहीं सोचते हैं इन सब बातों में, भगवान में जितना दोष हो सके उसको तो कहते हैं, भगवान के गुणों को याद नहीं करता, भगवान में कोई दोष नहीं है, मिथ्या कल्पना करके कहते हैं, अपने मन के दोषों का आरोप भगवान पर करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो देखिए भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को। नयन विशाला, भगवान जब प्रकट हुए तो उनके नयन खिले हुए थे और भगवान की आंखें बड़ी बड़ी है। यही संसार में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, भगवान शोभा के समुद्र है, अक्षय आकर अनंत सौंदर्य निकल रहा है। तो भगवान को इस रूप में कौशल्या माता देखती, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी के ही विधि कर अनंता माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण भनुता। दोनों हाथ जोड़ करके मां अपने बच्चे से प्रार्थना करती है, क्या कभी संसार में ऐसा हुआ है, आज ही बच्चा अभी दो मिनट पहले प्रकट हुआ और उसके पैर पर गिर रही है मैं। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता, हे अनंत मैं आपकी क्या स्तुति करूं। भगवान उसमें प्रकट हुए तो थोड़े बड़े रूप में प्रकट हुए, बच्चा ही थे लेकिन बिल्कुल शिशु नहीं, तो मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है आपके गुणों को कहने की। वास्तव में आप माया के गुणों से परे हैं, माया के तीन गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो आप सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से परे हैं, मतलब गुणातीत दिव्य है चिन्मय। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, माया के गुणों से आप अतीत, इंद्रियों के अनुभव से आप अतीत, और आप अपरिच्छिन्न है, अमान है, आपको मापा नहीं जा सकता, आप किसी देश में काल में बाधित नहीं। माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता, जो वेद पुराण भनंता, वेद और पुराण ऐसा कहते हैं, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि आपका सब कुछ है, अनंत है, चिन्मय है, दिव्य है। इससे सिद्ध हुआ कि कौशल्या जी बहुत ही वेद पुराण सुनी थी, ये पढ़ी भी होंगे। तब तो कार्य वेद पुराण कहते हैं कि आप चिन्मय हैं, दिव्य हैं। तो इसलिए प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक स्त्री को चाहिए कि वो वेद शास्त्र पढ़े। आजकल वेद शास्त्र पढ़ने का मतलब है वेद का फल भागवत पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, वेद का ही निष्कर्ष है। वेद शब्द आ जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ओरिजिनल वेद पढ़ेंगे, एक शब्द समझ में नहीं आएगा। लेकिन वेद की व्याख्या जो पुराणों में की गई है और श्रीमद् भागवतों में सारांश दिया गया है, तो ये कहा जाए कि वेद शास्त्र पढ़ना चाहिए तो उसका अर्थ है भागवत और भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उसका यही अर्थ होता है। माता कौशल्या भगवान के रूप गुण लीला आदि को खूब सुनी थी, ऋषियों के अन्य विशारण में पूर्व जन्म में सुने थे, इस जन्म में भी सुनते रहते थे। पहले के लोगों का यह सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे दीर्घ काल तक चलने वाला काम होता था भगवान की बातें सुनना। आयोजन नहीं करना पड़ता था उनको, 10 दिन का या 1 महीने का 2 दिन का आयोजन नहीं होता, रोज ही आयोजन ही आयोजन उनका होता था। सुनते रहते थे, स्त्रियां भी सुनती थी। तो मम हित लागी जनय अनुरागी प्रकट भयो श्री कंतन, करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जही का वही श्रुति संता, जो करुणा के सागर हैं, सौंदर्य के सागर हैं, अर्थात जिनमें अनंत करुणा है, अनंत सौंदर्य है, और वेद और संत जिनका गुण गाते हैं, वे प्रभु मेरे हित के लिए प्रकट हुए। वास्तव में तो आप लक्ष्मीकांत हैं, आप श्रीकांत हैं, लक्ष्मी जी के भी पति हैं, आपका कोई जन्म नहीं है, आपकी कौन माँ हो सकती है, आपका कौन पिता हो सकता है, लेकिन आप मुझे अपनी माँ के रूप में स्वीकार करके और मेरे गर्भ से प्रकट हुए। लेकिन एक बात के लिए माँ कौशल्या भगवान से कह रही है कि इसको दूसरे लोग नहीं मानेंगे कि आप मेरे गर्भ से प्रकट हुए, और मैं तो देखी हूं कि इतना दिन गर्भ में रहे आज प्रकट हुए, कैसे नहीं लोग मानेंगे। तो इसी विकल्प ऐसी प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ कौशल्या कहती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है, सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर नल है। माया के द्वारा रचे हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके एक रोम कूप में रहते हैं। हमारा जो शरीर है उसमें जो रोए जमे हुए हैं, तो आप देखेंगे वो छोटा सा गड्ढा जैसा होता है, उसको रोम कूप कहते हैं। रोम कूप है, बहुत सूक्ष्म होता है। तो भगवान के एक रोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अट गए हैं, रहते हैं। तो जिसके एक रोम कूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड अटा हुआ है, वो भगवान किसी स्त्री के गर्भ में कैसे अटेगा? ये संभव कैसे हो सकता है, जरा विचार कीजिए। परंतु माँ कौशल्या तो प्रत्यक्ष देखी है, गर्भ में रहे फिर प्रकट हुए। तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है, अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके एक एक रोम कूप में रहते हैं। सो ममौरवासी, ऐसे प्रभु मेरे उदर में रहे यह उपहास यदि मैं कहूंगी लोक में कि भगवान हमारे हृदय में हमारे उदर में आए हैं, तो मुनि लोग हंसे, अरे पगली ये क्या बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा क्यों कह रही है। माँ कौशल्या भगवान से ही बात कर रही है कि धीर मत स्थिर न लाए, यहाँ पर जिनकी बुद्धि में धैर्य है, जो बहुत अनुभवी है, वेद शास्त्र पढ़े हैं, वे लोग भी इस बात को नहीं मानेंगे। एक ब्रह्मांड में कितने कितने लोक हैं और स्थान हैं आप देख रहे हैं। केवल बंबई किसी के शरीर में अट जाए तो क्या वह व्यक्ति किसी माता के उदर में अट सकता है? फिर कैसे अटे? लेकिन भगवान की विचित्र लीला है। गीता में भगवान कहते हैं ये सारा जगत मेरे भीतर है, और फिर कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है। यह कोई विचित्र बात नहीं है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, तो हम इस मंदिर के भीतर बैठे हैं, परंतु हम मन से देख रहे हैं पूरे बंबई को, या हिमालय पर्वत को देख रहे हैं, समुद्र को भी बहुत दूर तक देख रहे हैं। तो हमारे मन में अटा हुआ है ना, हमारे मन में जितना भी हम सोच रहे हैं वो सब अटा हुआ है, समाया हुआ है, और मन शरीर के भीतर है। मन में सारा संसार है और मन शरीर के भीतर देख रहे हैं। वो शरीर से बाहर भी है, शरीर के भीतर भी है। जब मन इस तरह से हो सकता है, मन सब में समाया हुआ है, मन से सब अलग भी है, तो मन से भी सुपीरियर बुद्धि है, बुद्धि से भी सुपीरियर आत्मा है, आत्मा से बहुत सुपीरियर परमात्मा है। तो परमात्मा में क्यों नहीं संसार रह सकता है, इसके साथ नहीं भी है, दोनों बात फैक्ट है, इसमें कोई समझ नहीं। एक ही श्लोक में भगवान इस बात को कहते हैं, मतस्थानी सर्वभूतानि न च मतस्थानि भूतानि, भगवान कहते हैं। तो अर्जुन चकित हो गए, कैसी विपरीत बात बोल रहे हैं। एक बार कहते हैं सब कुछ मेरे भीतर है, और एक बार कहते हैं कुछ भी मेरे भीतर नहीं। तो भगवान कहते हैं पश्य मे जोग महेश्वरम, जरा बुद्धि लगाओ, बुद्धि विचार करो मैं कौन हूं, मेरे ऐश्वर्य योग को देखो। देखने का मतलब है जरा विचार करो मैं कौन हूं। तो इस प्रकार से जिन प्रभु के एक एक रोम कूप में अनंत अनंत ब्रह्मांड समा सकता है, वे प्रभु माता कौशल्या के कोख में उदर में समाये, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु कुछ लोग तो इस पर विश्वास नहीं करेंगे, यह उपहास ही। यदि मैं ऐसा कहूंगी कि भगवान हमारे पुत्र बने, हमारे गर्भ में आए, तो लोग हम पर हंसेंगे, अरे सपना देख रही हो, पागल बन गई हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सब हुआ। यह जो पद है ऐसा स्पष्ट लगता है कि श्रीमद् भागवतम के ही श्लोक का अनुवाद है। माता देवकी ने भगवान से कह दिया प्रकट होने पर कि आप जल्दी से जल्दी इस रूप को छिपा लीजिए, विष्णु रूप को आप छिपा लीजिए, यहां तक कि आप अपने रूप को अदृश्य कर दीजिए। तो भगवान ने कह दिया कि माँ तुम क्यों मुझे छिपने के लिए कह रही हो। उसने कह दिया कि इस बात का पता न लगे कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए, नहीं तो कंस आपको मारेगा। उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे गर्भ से जन्म लिए हैं। जैसे पहले आप अदृश्य थे, वैसे आप फिर अदृश्य हो जाइए, कहीं चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि माँ मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया हूं, इसके कारण तुम मेरी माँ कही जाओगी, तुम्हारी बहुत प्रशंसा संसार में होगी, आत्मश्लाघ है, तुम्हारी श्लाघा होगी, बड़ाई होगी, मुझे इसी तरह रहने दो। तो माता देवकी कहती है मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे बड़ाई नहीं चाहिए, बल्कि मेरी बहुत भारी हंसी होगी यदि मैं कहूंगी कि आप हमारे गर्भ से जन्म लिए हैं, तो सब लोग कहेंगे कि देवकी झूठ बोलना चालू कर दी। भारी प्रशंसा नहीं होगी, सब लोग हमको झूठी कहेंगे, हमारी बेइज्जती होगी, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। सगर्भ गोत भूत हो और निर्लोक से विनम नम जीता, लोग तो विश्वास नहीं करेंगे कि आप हमारे गर्भ में आए। ऐसे आज भी विचार चलता है कि भगवान वास्तव में गर्भ में आते हैं कि नहीं। कुछ वैष्णव लोग भी कह देते हैं नहीं नहीं वो तो केवल देखने भर के लिए होता है, भगवान गर्भ में नहीं आते। क्यों भगवान गर्भ में नहीं आ सकते हैं क्या? जब परमात्मा रूप से सबके हृदय में है ही, तो गर्भ में रहना कौन उनके लिए मुश्किल काम है। जहां भगवान आते हैं वहां धाम पहले बन जाता है भगवान का। जैसे सूरज कहीं जाएगा तो उसके चारों तरफ आलोक आलोक प्रकाश प्रकाश पहले भर जाता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य जाकर किसी अंधकारमय कोठरी में बंद हो जाएगा, उसको कोई कैद कर लेगा, कोई कर सकता है ऐसा? किसी कोठरी में अंधकार भरा हुआ है और किसी दुर्बुद्धि के मन में यह बात हो कि सूर्य को इस अंधकार के भीतर बंद करो, तो सूर्य के आने के समय ही अनंत दूर तक तो प्रकाश पहले ही छा जाएगा, अंधकार क्या रह सकता।
राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान जी,
your language.